सलाम के दादा अब्दुल मुतलिब जो अपने बच्चों को नहीं बैठने देते थे, अपने बच्चों को रोकते मना करते कि नहीं मेरे बेटे मोहम्मद को यहाँ बैठने दिया करो, ये अपने मर्तबे और मकाम को पहचानता भी है और इसकी वाकई कोई बहुत बड़ी शान है, इसको मत कहा करो, इसको मत रोका करो। अब ये क्या है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तरबियत का एक निज़ाम है। कैसी तरबियत? लाजमी बात है, मक्का के सरदार के पास सरदारों नहीं आना है, अपने भी गैर भी, दूर कबाइल के लोग भी, बादशाहों के वफूद भी, तो सरदारों का रख रखाव, उनकी बातचीत, उनका अंदाज़ गुफ्तार, उनके जितने भी तौर तरीक़े हैं, ये वही सीख सकता है ना जो उन मजालिस में बैठेगा। जो दूर होगा कैसे सीखेगा? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, एक कुदरत की तरफ से एक बेहतरीन इंतज़ाम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त आना था कि दुनिया के बड़े बड़े सरदारों और बादशाहों के साथ, हुक्मरानों के साथ आपने मुआहदे करने थे, उनको इस्लाम और तौहीद की दावत देनी थी, उनको अदल इंसाफ का सबक देना था। ये चीज़ें तब ही मुमकिन होतीं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बेहतर तरीके से सरदारों के मिजाज को जानते, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये निज़ाम था। एक और अजीब वाक़िया है, सीरत इब्ने हश्शाम में भी है और मुस्तदरक हाकिम में भी है, कुंदेर इब्ने सईद की तरफ से, वो अपने वालिद की तरफ से रिवायत करते हैं कि मैं एक मर्तबा ज़माना जाहिलियत में हज के लिए हाजिर हुआ मक्के। मैंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत और कवि और बूढ़े शख्स हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ़ किए जा रहे हैं और बड़ी गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरे सवार मोहम्मद को वापस भेज दे और मुझ पर यह अजीम शान एहसान कर, गिड़गिड़ाते मांगते जा रहे हैं। कहते मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि ये बंदा कौन है और किसके लिए इतना रो रो के दुआएं मांग रहा है। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये दुआ करने वाले कौन है और ये मांग क्या रहे हैं, क्या मतलब है, समझा नहीं। उन्होंने कहा कि ये मक्का के सरदार अब्दुल मुतलिब हैं, ये अपने पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के लिए दुआएं मांग रहे हैं। कोई एक ऊँट था जो गुम गया था और उन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को भेजा था कि जाओ इस ऊँट को तलाश करके लेकर आओ, और आज तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को कोई काम दिया गया, आसान या मुश्किल, सारे काम हो गए, कभी ऐसा ना हुआ कि उनसे कोई काम ना पूरा हुआ हो। तो वो इस मुहिम पे गए हुए हैं, देर ज़्यादा हो गई है, तो दादा परेशान होकर दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरा बेटा, मेरा पोता मोहम्मद तो मुझे वापस दे दे। अभी ये लोगों से हाल अहवाल लिए, ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और वो ऊँट भी वापस ले आए। जैसे ही दादा ने देखा कि पोता वापस आ गया, तो दादा ने आगे बढ़ के सीने से लगाया और कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें हरगिज़ अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। ये बेटे एक होती ना बाप और बेटे की मोहब्बत, इसकी अपनी अहमियत है। माँ बाप को चाहिए कि औलाद को वक्त दें। कुछ दिन पहले मुझे किसी का फ़ोन आया कि जी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है तो मुझे अपने बेटे के लिए वीडियो गेम लेनी है, तो प्ले स्टेशन कौन से मॉडल का लूँ, कहाँ से लूँ, किस से लूँ, कौन सी चीज़ उसको दूँ, कौन सा प्ले स्टेशन ख़रीद के दूँ। मैंने कहा आप उसको प्ले स्टेशन ना दें, आप उसको अपना वक्त दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अपनी औलाद को अपना वक्त दें, तो बाप का औलाद को वक्त देना ये भी इंतहाई ज़रूरी, लेकिन जो दादा का पोते के साथ, पोते का दादा के साथ ताल्लुक़ है, इसके अंदर भी बड़ी बातें हैं। बाप आमतौर से घर के इंतज़ाम में, काम कारोबार, मुलाजमत में मसरूफ़ होता है, दादा के पास निस्बतन वक्त भी होता है, और दादा की जो पोते से मोहब्बत होती है वो भी बड़ी अजीब होती है, और दादा की इस उम्र में आके दादा के अंदर हिल्म, बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी, पेशेंस बहुत ज़्यादा आ चुका होता है। तो पोता जब दादा के साथ वक्त गुजारता है तो दादा के अंदर जो सिफात होती हैं ये आगे नस्लों के अंदर मुंतकिल हुआ करती हैं। तो घरों के अंदर इस किस्म की मोहब्बतों का कायम होना ये इंतहाई ज़रूरी है। कोरोना के नुकसानात तो बहुत हैं और बहुत ही हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि कई बातों में ना हम लोग बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गए थे, मसलन शादी ब्याह में बेइंतहा हद से बढ़ गए थे, एक एक हज़ार आदमी, 1500-1500, 2000, 2500 आदमी एक एक खाने पे बुलाए जा रहे हैं, 20-20, 40-40 लाख रुपए एक एक खाने पे लगाए जा रहे हैं। ये तो वो बंदा कर रहा है जिसने खाना खिलाना था, अब जो सैकड़ों हज़ारों आने वाले लोग हैं, हर आदमी, औरतें और वो जो उसके लिए तैयारियां और लिबास और अखराजात और दिखावा और क्या क्या चीज़ें थी, कुछ वो कंट्रोल हुई हैं, शादियां हो रही हैं, चंद लोग जाते हैं, चंद लोगों में शादी हो जाती है सादगी से। इसके अलावा दुकानों के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर बेहिसाब बिला ज़रूरत वक्त देना, 10-10 बजे, 12-12 बजे, 2-2 बजे तक कारोबार पे लगे हुए, औलाद को वक्त नहीं दे रहे, बीवी को वक्त नहीं दे रहे, माँ बाप को वक्त नहीं दे रहे, तो 7 बजे मार्केट बंद होने से तो घर वालों के लिए भी कुछ वक्त निकलने की उम्मीद पैदा हुई। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें, कुछ फ़ायदे भी हैं, अल्लाह करे हम इन बातों को समझें और हकीकत पर वापस आ जाएं। खुद आसानी से वापस आ जाते तो अच्छा था, आज अल्लाह कोरोना के डंडे से लेकर आए। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के पास नबी अलैहिस्सलाम 2 साल रहे, और बहरहाल जो भी उम्र थी, नबी अलैहिस्सलाम के दादा का इंतकाल हो गया, और इंतकाल से पहले नबी अलैहिस्सलाम के दादा ने अपने तमाम बेटों में से अबू तालिब का इंतखाब किया और अबू तालिब को कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद का मेरे बाद आपने ख्याल करना है। हज़रत अब्बास को भी कहा और उनके एक बेटे थे ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब, उनको भी कहा कि भाई तुम लोगों में नहीं ख्याल करना है, लेकिन असल ज़िम्मेदारी अबू तालिब के कंधे पे डाली। उसकी एक वजह तो किताबों में ये लिखी है कि अब्दुल मुत्तलिब के 10 बच्चे मुख्तलिफ बीवियों से थे, लेकिन उनके 2 बेटे नबी अलैहिस्सलाम के वालिद अब्दुल्ला और चचा अबू तालिब भी एक माँ से थे, तो इस वजह से भी उनको था कि चलो इनकी माँ भी एक और पीछे बाप भी एक, तो ये ज़रा ताल्लुक़ ज़्यादा करीब का महसूस होता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत और तरबियत का मामला अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अबू तालिब की ज़िम्मेदारी में दिया और फिर उनका इंतकाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको अपने दादा के इंतकाल का वक्त याद है, फरमाया कि हाँ, उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी, और उम्मे ऐमन कहती हैं कि जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। पैदा हुए तो बाप का साया ना था, 6 साल की उम्र में माँ चली गई थी, और आज दादा का भी साया जा रहा है, ये सहारा भी जा रहा है, ये सब सहारे अल्लाह क्यों वापस ले रहे हैं, ताकि कल को ये कह ना सके कि इनकी तरबियत में फ़लाँ का हाथ था, फ़लाँ का हाथ था। इनकी तरबियत तो फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही की, और अल्लाह ही ने इज़्ज़तें अता फ़रमाईं। नबी अलैहिस्सलाम अपने दादा की वफ़ात के बाद अपने चचा की आगोश तरबियत में आ गए। अबू तालिब ने आपको अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत दी, औलाद से ज़्यादा क़ुर्ब दिया, औलाद से ज़्यादा ख्याल रखा, और बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा, हर हर एतबार से आपका ख्याल उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा। कई अजीब वाक़यात हैं, खाना खाती थी तो ऐसा बहुत कम होता था कि एक दिन में 2 वक्त पेट भर के भी खाना खाया हो, तो खाना भी नाकाफ़ी रहता था। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम खाना खा रहे हैं, खाना ख़त्म हो गया, भूख बाकी, सब परेशान, अब क्या करें। फिर ऐसा भी होता कि नबी अलैहिस्सलाम मौजूद होते, सब खाना खा रहे होते, सबके पेट भर जाते, सब सैर हो चुके होते, और खाना बाकी रहता। जब ये बार बार तजुर्बे से साबित हो गया, अब क्या होता, अब अबू तालिब ये कहते जब खाना लगने लगता और लोग बैठे होते, घर के लोग बैठे होते, कहते खबरदार कोई हाथ ना लगाए खाने को, सब्र करो, मेरा बेटा मोहम्मद आएगा, उस वक्त फिर शुरू करें। फिर नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद सब लोग खाना खाना शुरू करते, और आपकी बरकत से वो थोड़ा खाना सबका पेट भी भर जाता और खाना भी बच जाता। ये मुस्तकिल मुशाहिदा रहा, और यही मुशाहिदा दूध के पीने पे भी रहा। नबी अलैहिस्सलाम मौजूद ना होते, जितना उनके पास दूध होता, वो जनाब दूध भी सारे पी लेते और दूध ख़त्म भी हो जाता, और किसी को भी तसल्ली ना होती। फिर जब नबी अलैहिस्सलाम की इन तजुर्बे, इन बरकात का उन लोगों ने पूरा मुशाहिदा कर लिया, फिर ये लोग क्या करते, दूध का प्याला सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता, नबी अलैहिस्सलाम वो प्याले से दूध नोश फरमाते, उसके बाद दूसरे को देते, तीसरे को देते, चौथे को देते, तमाम लोग उस प्याले से दूध भर के, अपना पेट भर के दूध पी लेते और प्याले में आखिर में भी दूध बचा रहता। इस तरह की बेशुमार दफ़ा दिन रात जब उन्होंने बरकत देखी तो अबू तालिब तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बिल्कुल कुर्बान हो गए, आशिक हो गए, फिदा हो गए और आपका बहुत ज़्यादा ख्याल करने लगे, अपनी सगी औलाद से ज़्यादा आपका ख्याल करने लगे। अल्लाह की शान, जिस तरह अब्दुल मुतलिब के लिए कालीन बिछाया जाता था ना बैतुल्ला शरीफ के बिल्कुल दीवार के साए में, इसी तरह अबू तालिब का भी एक तकिया था जिस पे वो टेक लगा के आराम के साथ बैठा करते थे और बाकी कोई आदमी उस तकिए पे नहीं आता था। अल्लाह को ये बड़ी शान वाला है और लगता है इसको पता है कि ये खुद बड़ी शान वाला है, इस मेरे बच्चे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। बहुत सारे वाकयात हैं। एक मर्तबा क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम 7 साल की उम्र के थे, आपकी आंखें जो है ना दुखने आ गई, आंखें तकलीफ में आ गई। अबू तालिब ने मक्के में बड़ा इलाज कराया, कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर किसी ने कहा कि उकास के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों का इलाज करता है, आप उसके पास जाइए। कि उकास के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों का इलाज करता है, तो आप अपने भतीजे अपने बेटे मोहम्मद को ले जाइए। अबू तालिब ने देखा नबी अलैहिस्सलाम की आंखें तकलीफ़ में हैं, फौरन अपने भतीजे को साथ लिया और उकास के उस जगह पे पहुंच के उसके दरवाजे को, गिरजे को, सोमड़े को नोक किया, उसको आवाज़ दी, वो अंदर से आवाज़ सुन के बाहर ही ना आया। ये लोग बाहर खड़े रहे, जब वो बाहर ना आया ना तो उसका पूरा गिरजा जलजले से हिला, वो डर गया और डर के फौरन बाहर आया। और बाहर आते ही जैसे ही अबू तालिब को देखा और साथ बच्चे को देखा, कहने लगा मुझे लगता है कि ये बच्चा आने वाले वक्त का नबी है और इस उम्मत का ये नबी है, मैं अगर अभी बाहर ना आता तो इसके बाहर खड़े रहने के इंतज़ार की वजह से मैं अभी अंदर रहता तो मेरा गिरजा मेरे ही ऊपर गिर जाना था और मैंने मर जाना था, ये बड़ी शान वाला है। वे पूछा आए क्यों हो, अबू तालिब ने कहा कि भाई बच्चे की आंखें ठीक नहीं है, तभी आंखें ख़राब हैं, तो ज़रा आप बताइए क्या इलाज किया जाए, हमें तो लोगों ने कहा आपके पास कोई इलाज है। तो उस राहब ने कहा अबू तालिब इलाज तो इसके अपने पास मौजूद है, बच्चे के पास मौजूद है, मेरे पास क्या लेने आए हो, भाई क्या मतलब कौन सा इलाज बच्चे के पास मौजूद है। तो राहब ने कहा कि भाई इनका लुआब दहन इनकी आंखों पर लगाइए, अभी ठीक हो जाएगा। तो अबू तालिब ने फौरन नबी अलैहिस्सलाम का लुआब दहन उनकी आंखों पे लगाया, फौरन ठीक हो गया। तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम के मुआजजात बहुत कसरत से होते थे। एक बार मक्का मुकरमा में कहत हो गया, बिल्कुल बारिश ना हुई, लोग परेशान, जानवर परेशान, सब लोग परेशान। फिर लोग जमा हुए, किसी ने कहा भाई लात से मानो, मनात से दुआएं करो, उज्जा से मांगो, लात व मनात पे भरोसा करो, इनसे मांगो। तो उनके अंदर एक बूढ़ा था, उन्होंने कहा देखो तुम क्या कर रहे हो, इन बुतों से मांग रहे हो, हालांकि तुम्हारे पास अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, अबू तालिब की, कहाँ और किसकी, अबू तालिब के पास जाओ, उनसे दुआएं करवाओ, वो अच्छे आदमी हैं। अभी अहले मक्का घूम कर फिर के मिल के सारे आए अबू तालिब के दरवाजे पर, आके दरवाज़ा नॉक किया और आके कहा कि जी हमारे लिए दुआ कर दीजिए, और मक्का में बड़ी परेशानी और कहत का वक्त है और कहीं पानी नहीं है। कहीं पानी नहीं है और नबी अलैहिस्सलाम की को नबी अलैहिस्सलाम को बैतुल्ला की पुश्त से लगाकर फिर दुआ मांगी और नबी अलैहिस्सलाम ने भी उंगली का इशारा अल्लाह की तरफ किया। तो लोग देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, उन्होंने गौर किया तो आसमान के ऊपर कहीं बादल का नामो निशान ना था, लेकिन जब इन लोगों ने दुआएं की फौरन बारिश हो गई और इस कदर बारिश हुई कि शहर भी सैराब हो गए, जंगल भी सैराब हो गए। भाई मेरे लिए दुआ भी करें, बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, आप लोगों को सुनने में तकलीफ हो रही होगी लेकिन मुझे बोलने में आपके सुनने से ज्यादा तकलीफ हो रही है, अल्लाह ताला आसान फरमाए। حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، دو واقعات خاص طور سے، فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرِ، انہوں نے پتھر پہ لاٹھی ماری، پانی نکل آیا، فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ، انہوں نے سمندر پہ لاٹھی ماری تو راستے نکل آئے، خشکی آ گئی، اور الحمدللہ یہ دونوں موقع دیکھنے کا مجھے موقع ملا اور ان دونوں مقامات پہ جانے کی توفیق اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی شان والے نبی، بہت شان والے نبی، بہت شان والے، کلیم اللہ، بہت بڑے نبی ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ ابو طالب ایک مرتبہ ذی المجاز کے میلے میں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے، یہ جگہ میدان عرفات سے 8 کلومیٹر آگے تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں اور ابو طالب ساتھ ہیں، یہ دو لوگ ہیں۔ اچانک راستے میں ابو طالب کو پیاس لگی بڑی شدید، برداشت نہ ہوا تو اپنے بھتیجے کو کہا کہ بھتیجے مجھے بڑی پریشانی ہے، اس وقت بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اچھا ہاں، اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس پانی بھی نہیں تھا، یا تو یہ ہو نا کہ بھائی پانی کسی کے پاس ہے، بھائی مجھے پیاس لگی ہے آپ پانی دے دیں، صرف اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے کہ شدید پیاس تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب نے کہا کہ مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری روکی، نیچے اترے، پوچھا چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ کہاں بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پتھر پر اپنا پاؤں مارا، ایڑی ماری، پاؤں لگنے کی دیر تھی پتھر کے اوپر کے اندر سے صاف عمدہ اور شفاف پانی نکل آیا۔ ابو طالب نے پیا، طبیعت سیر ہو گئی، نبی علیہ السلام نے دوبارہ پاؤں مارا، وہ ختم ہو گیا، دوبارہ خشک ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ کیسی بات ہے۔ ابو طالب کے ایک بھائی تھے زبیر ابن عبد المطلب، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا تھا، تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک قافلے میں گئے ہوئے تھے شام کی طرف، تو راستے میں ایک وادی گزرتی تھی جہاں اس وادی میں ایک اونٹ تھا، وہ سرکش اونٹ کے نام سے مشہور تھا، وہ آنے جانے والوں کو بلا وجہ تنگ کرتا، کوئی قافلہ گزرتا، لوگ گزرتے تو بلا وجہ وہ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبیر ابن عبد المطلب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ تھے، اسی وادی سے گزر ہوا جہاں وہ سرکش اونٹ تھا، لوگوں کو پتہ تھا یہ اونٹ تو سب کو تنگ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جیسے ہی اس اونٹ نے دیکھا، آگے آیا اور اپنی گردن زمین کے اوپر رگڑنے لگا، عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرنے لگا، لوگ بھی حیران تھے یہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور اس سرکش اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے، پھر وہ اونٹ آپ کو لے کے وادی کے آخر کنارے تک چلا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ سے اٹھ کے واپس اپنی سواری پر آئے اور وہ اونٹ واپس چلا گیا۔ اس ماجرے کو لوگوں نے دیکھا بھی اور یہ مشہور بھی وہاں پہ ہوا کہ یہ کیسا عجیب واقعہ تھا۔ ابھی اپنے جہاں جانا تھا گئے، ایک قافلہ جب واپسی لوٹ رہا تھا نا مکہ کی، طوفانی بارشیں ہوئی تھی، وہ طوفانی پانی وہاں موجود تھا اور موجے مار رہا تھا، پوری وادی بھری تھی، چلنے کی جگہ نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے منظر کو دیکھا اور اپنے قافلے والوں کو فرمایا کہ دیکھو تم بس میرے پیچھے آتے چلے جاؤ، میرے پیچھے آتے چلے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی میں داخل ہو گئے اور لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے نبی علیہ السلام کے لیے اس راستے کو خشک کر دیا، آپ اپنے پورے قافلے سمیت اس خشکی سے نکل کر اپنی منزل پہ روانہ ہو گئے اور وہ جگہ پہنچ گئے، اس وادی کو کراس کر لیا۔ قافلے والے جب مکہ آئے اور ان نے واقعات بیان کیے تو یہ مکہ کے لوگ کہہ اٹھے کہ اس لڑکے کی تو شان ہی نرالی، واقعی نرالی شان ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک قیافہ شناس تھا، قیافہ شناس بہت مشہور تھا، اور لوگ اس کے پاس اپنے بچے لے کے جاتے، کہتے بھی میرے بچے کو دیکھو، اب اندازہ لگاؤ کہ میرا بچہ کیسا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ یہ بنو لہب کا جو قیافہ شناس تھا یہ مکے آیا، جناب مکے میں مشہور تو پہلے ہی تھا، مکے کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے بچے کو چک کرا رہا ہے، بھیڑ لگ گئی، सब आ रहे हैं उसके पास कि भाई मेरा बच्चा पहले देखो, मेरा देखो, मेरा देखो, रश लगा हुआ है। अबू तालिब ने भी नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, कहा चलो जी मैं भी पूछता हूँ। अब वो बहुत सारे बच्चे थे, वो एक एक बच्चे को देख के फिर उसके बाप को तफसील बता रहा था, ये कर रहा था। इतने में नबी अलैहिस्सलाम आपके करीब जब आए, उस नबी अलैहिस्सलाम उस कयाफा शनास के करीब जब पहुँचे, अबू तालिब साथ थे, कयाफा शनास ने एक नज़र आपको देखा और अपने काम पे मशगूल रहा, लेकिन अबू तालिब ने महसूस कर लिया कि इसकी देखने की जो नज़र थी ना, देखने के बाद इसके अंदर कुछ तगैर पैदा हुआ है कयाफा शनास के अंदर। तो अबू तालिब ने ख़तरे को महसूस किया और कहा नहीं, मुझे यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और वापसी चल पड़े। अभी ये निकल ही रहे थे, उस जगह से हट गए थे, अभी दूर नहीं हुए थे, इतने में वो कयाफा शनास जिस बच्चे को डील कर रहा था उसके बाप से फारिग हो गए। इधर देखा तो इधर नबी अलैहिस्सलाम नहीं थे। वो चिल्लाया कि लोगों वो बच्चा किधर है जो अभी मैंने देखा था, तुम्हारा नास हो, बुलाओ उसको, खुदा की कसम वो तो इस उम्मत का नबी है। अबू तालिब ने ये अल्फाज तो सुन लिए लेकिन उसके बाद दोबारा सामने नहीं आए लेके बच्चे को और वापस रवाना हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के साथ शाम के सफ़र किया तिजारत की गर्ज़ से। चचा ने इरादा किया कि मुझे जाना है और नबी अलैहिस्सलाम को साथ न ले जाने का इरादा किया। नबी अलैहिस्सलाम मखमूम हो गए और ख़ूब परेशान हुए, कहने लगे ना मेरी माँ है ना बाप है, आप मुझे कहाँ छोड़ के, किसके हाथ पे छोड़ के जाते हैं, मैं तो आपके साथ जाऊँगा। उनका बेटा मैं तो ख़ुद तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ लेकिन तिजारत है, सफ़र के काम की मजबूरियाँ हैं, जाना है तो मैं इसलिए नहीं लेके जाता कि कोई परेशानी ना हो, सफ़र की तकलीफ़ें। अगर नहीं मुझे तो आप लेके चलें। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 9 साल थी। बिलाखिर उन्होंने अपने साथ अपने ऊँटनी पे बिठाया और ये लोग चल पड़े। रास्ते में कई लोगों से मुख्तलिफ अंदाज़ की मुलाकात, जो ईसाइयों की खानकाह थी सोमहा, वहाँ पर जो राहब था ना, राहब इबादत गुजार वहाँ का जो पादरी था, उसने जब नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो चौंक उठा, पूछा ये बच्चा कौन है, अबू तालिब से पूछा। अबू तालिब का मेरा बेटा, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता इसका बाप जिंदा हो, तुम इसके बे बाप हो ही नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा भाई बात यह है कि ये मेरे भाई का बेटा है, उसका इंतकाल हो चुका। क्या हाँ ये बात मुमकिन है कि ये तुम्हारा भतीजा हो, कि जो हमारी किताबों में बातें लिखी हुई हैं वो यही बातें हैं कि ये बच्चा यतीम पैदा होगा और हम अंदाज़ा लगा चुके थे कि ये बच्चा पैदा हो चुका है और आज मैं उसको देख रहा हूँ और तमाम आलामात और निशानियाँ मौजूद हैं नबी होने की। अबू तालिब ने पूछा नबी क्या होता है भाई, ये नबी क्या चीज़ है, ये क्या मामला है। राहब ने कहा कि नबी वो होता है जिसके पास आसमान से ख़बरें आएँ और ज़मीन वालों को वो इनकी इत्तला दे। तुम यहूदियों से ख़ास तौर से इस बच्चे की हिफाजत करना, ऐसा ना हो कि ये बच्चे को यहूदी नुकसान पहुँचाएँ। इसी तरह का एक और वाक़या मिलता जुलता, ये रास्ते में एक और राहब से मुलाकात हुई तो उस राहब ने भी दूसरे वाले ने देख के भी यही कहा।
www.dasquran.com